डेनियल की पुस्तक निकाहम संख्या 189। पानियम के युद्ध का भविष्य सूचक ताना बाना। रविवार के कानून की भूमिका।
पानियम का युद्ध मूलतः एक आत्मिक युद्ध था। रविवार के विधान से ठीक पहले आठवां राष्ट्रपति, जो 1999 में अर्थात अंत के समय रोनाल्ड रीगन के बाद छठा है, जो अंतिम रिपब्लिकन राष्ट्रपति भी है और जो सबसे धनी राष्ट्रपति है तथा जो वैश्विकतावाद के समस्त क्षेत्र को भी उकसाता है, त्यागी प्रोटेस्टेंटवाद का नेतृत्व करते हुए पान के यूनानी धर्म को पराजित करेगा, जो वैश्विकतावाद का वोकवाद है। पद 11 और 12 में जो इतिहास 2014 के यूक्रेन युद्ध से आरंभ होता है, वो पद 16 में रविवार के विधान पर समाप्त होता है। पद 15 में पानियम का युद्ध है और पानियम का युद्ध एक्टियम के युद्ध की ओर ले जाता है, जो तृतीय विश्व युद्ध है। बड़े भूकंप के समय जो 16वें पद का रविवार का कानून है, तीसरे हाय का इस्लाम संयुक्त राज्य अमेरिका पर आक्रमण करता है, जिससे जातियां क्रोधित होती है और राष्ट्रीय विनाश उत्पन्न होता है। उस आक्रमण से पहले पानियम का युद्ध होता है। रविवार के कानून पर अजगर, पशु और झूठे भविष्यद्वक्ता का त्रिगुणात्मक संघ स्थापित किया जाता है।
परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन करते हुए पोपाई संस्था को लागू करने वाली आज्ञा के द्वारा हमारा राष्ट्र अपने को पूर्णतः धर्म से विच्छिन्न कर लेगा। जब प्रोटेस्टेंटवाद उस खाई के पार अपना हाथ बढ़ाकर रोमी सत्ता का हाथ थाम लेगा, जब वो उस अथाह गर्त के ऊपर से पहुंचकर आत्मवाद के साथ हाथ मिला लेगा, जब इस त्रिविध संघ शंघ के प्रभाव में हमारा देश अपने संविधान के प्रत्येक सिद्धांत को, जो एक प्रोटेस्टेंट और गणतंत्री शासन के रूप में है, अस्वीकार कर देगा और पोपाई मिथ्याओं तथा भ्रमों के प्रसार के लिए प्रबंध करेगा, तब हम जान सकते हैं कि शैतान के अद्भुत कार्य प्रदर्शन का समय आ पहुंचा है और अंत निकट है। टेस्टिमोनीज वॉल्यूम 5, 84-85।
उस समय पापसी का घातक घाव पूरी तरह भर चुका होता है और वो तब तक पूर्ण प्रभुत्व के साथ शासन करती रहती है, जब तक अंततः बिना किसी की सहायता के उसका अंत नहीं हो जाता। रोम जब तीसरी बाधा पर विजय पाता है, तभी वो शासन करती है, जैसा कि दानियल अध्याय 8 पद 9 और अध्याय 11 पद 16 से 19 में मूर्ति पूजक रोम द्वारा दर्शाया गया है। जब पापल रोम ने 3 सींगों को उखाड़ फेंका, तब उसने 1260 वर्षों तक पूर्ण प्रभुत्व के साथ शासन किया। इसी प्रकार जब मूर्ति पूजक रोम ने 31 ईसा पूर्व एक्टियम के युद्ध में तीसरी बाधा अर्थात मिस्र को जीते लिया, तो उसने 360 वर्षों तक पूर्ण प्रभुत्व के साथ शासन किया। व्याकरण में प्रत्यय ईउम शब्द के अंत में जोड़कर ऐसा संज्ञा बनाया जाता है जो किसी स्थान, अवस्था या किसी वस्तु के संग्रह को दर्शाता है। ये सामान्यतः तकनीकी और वैज्ञानिक पदों के निर्माण में, विशेषकर रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में प्रयुक्त होता है। उदाहरण के लिए, स्टेडियम खेल प्रतियोगिताओं या अन्य आयोजनों के लिए एक स्थान को दर्शाता है। अक्वेरियम उस स्थान को जहां जलीय जीवों या पौधों को प्रदर्शन हेतु रखा जाता है, और जिम्नेजियम शारीरिक व्यायाम या प्रशिक्षण के लिए स्थान को दर्शाता है। वैज्ञानिक पारिभाषिक शब्दावली में ईयूम का उपयोग अक्सर किसी रासायनिक तत्व या यौगिक को सूचित करने के लिए किया जाता है, विशेषकर तब जब उस तत्व या यौगिक को पृथक किया गया हो या खोजा गया हो। उदाहरण के लिए, सोडियम उस रासायनिक तत्व को संदर्भित करता है जिसका प्रतीक Na है। कैल्शियम उस रासायनिक तत्व को संदर्भित करता है जिसका प्रतीक Ca है। मूर्ति पूजक रोम के सर्वोच्च शासन की शुरुआत एक्टियम के युद्ध में हुई और पानियम के युद्ध ने एक्टियम द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए युद्ध के लिए द्वार खोल दिया, क्योंकि लाइन अपॉन लाइन एक्टियम उस रविवार के कानून का प्रतिनिधित्व करता है जब पापसी फिर से विश्व पर सर्वोच्च रूप से शासन करेगी। एक्टियम एक समुद्री युद्ध था और पानियम एक जमीनी युद्ध था। इस प्रकार इन दोनों युद्धों का संबंध एक ऐसे युद्ध का प्रतिनिधित्व करता है जो भूमि और समुद्र दोनों को समेटते हुए विश्वव्यापी है। प्राचीन इतिहास का सबसे प्रसिद्ध समुद्री युद्ध एक्टियम भी एक विश्वव्यापी युद्ध का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि जो जल तूने देखा, जहां वो वेश्या बैठी है, वे लोग, भीड़ें, जातियां और भाषाएं हैं। पैनियम एक आध्यात्मिक युद्ध का प्रतिनिधित्व करता है जो शीघ्र आने वाले रविवार के कानून के समय एक राजनीतिक युद्ध के साथ संयुक्त है। पैन शब्द संज्ञा के संदर्भ के अनुसार कई अर्थ रखता है, लेकिन यूनानी पौराणिक कथाओं में पैन चरवाहों, झुंडों, देहाती संगीत और वन्य प्रदेश का देवता है। उसे अक्सर आधे मनुष्य और आधे बकरे के रूप में दर्शाया जाता है, जो संगीत और प्रकृति के प्रति अपने प्रेम के लिए जाना जाता है।
छल के महान नाटक के चरम कृत्य के रूप में शैतान स्वयं मसीह का रूप धारण करेगा। कलीसिया लंबे समय से ये घोषित करती आई है कि उसकी आशाओं की परिपूर्ति उद्धारकर्ता के आगमन में है। अब वो महान छलिया ऐसा दिखाएगा मानो मसीहा आ गया हो। पृथ्वी के विभिन्न भागों में शैतान मनुष्यों के बीच चकाचौंध कर देने वाली दीप्ति से युक्त महिमामय व्यक्तित्व के रूप में प्रकट होगा, जो प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना द्वारा दिए गए परमेश्वर के पुत्र के वर्णन से मिलता जुलता होगा। प्रकाशित वाक्य 1:13-15। महान संघर्ष 600 तबकाले।
पान चरवाहा देवता है और वो सच्चे चरवाहे का रूप तो धारण करेगा। मसीह का शैतानी प्रतिरूपण रविवार के विधान से आरंभ होता है, क्योंकि उस डिक्री पर हम तब जान सकते हैं कि शैतान के अद्भुत कार्यकलाप का समय आ पहुंचा है और अंत निकट है। शब्द फैन का अर्थ एक उथला चौड़े किनारों वाला पकाने का बर्तन भी हो सकता है, जिसका उपयोग तलने, बेक करने या भोजन पकाने में किया जाता है। अंतिम युद्ध का केंद्र आध्यात्मिक यरूशलेम है, वह पवित्र पर्वत जो ध्वज के रूप में ऊंचा उठाया गया है, और वही पर्वत जिसकी ओर परमेश्वर की दूसरी भेड़ें, जो अभी भी बाबेल में हैं, भाग कर जाती है। उस समय सब राष्ट्र आध्यात्मिक यरूशलेम के विरुद्ध आएंगे, जिसकी पहचान कप पैन के रूप में की गई है।
इज़राइल के विषय में यहोवा के वचन का भार। यहोवा की ये वाणी है, जो आकाश को तानता है, पृथ्वी की नेव डालता है और मनुष्य की आत्मा को उसके भीतर रचता है। देखो, मैं यरूशलेम को उसके चारों ओर की सब जातियों के लिए लड़खड़ाने का कटोरा ठहराऊं, जब वे यहूदा और यरूशलेम दोनों के विरुद्ध घेरा डालेंगे। और उस दिन मैं यरूशलेम को सब लोगों के लिए एक भारी पत्थर ठहराऊंगा। जो कोई उसे उठाने का यत्न करेगा, वो चूर चूर हो जाएगा, चाहे पृथ्वी की सब जातियां उसके विरुद्ध इकट्ठी क्यों न हो जाएं। जकर्याह 12:1-3।
यरूशलेम भी देग है, क्योंकि वही वो बर्तन है जिसमें नाटक संपन्न होता है। कैल्ड्रन एक पकाने का बर्तन होता है।
तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के पुत्र, ये वे पुरुष हैं जो अनर्थ की युक्ति रचते हैं और इस नगर में दुष्ट परामर्श देते हैं, जो कहते हैं, यह निकट नहीं है, आओ हम घर बनाए, यह नगर देग है और हम मांस है। इसलिए उनके विरुद्ध भविष्यवाणी कर, भविष्यवाणी कर, हे मनुष्य के पुत्र। और प्रभु की आत्मा मुझ पर उतरी और उसने मुझसे कहा, कह, प्रभु यूं कहता है, हे इज़राइल के घराने, तुमने यूं कहा है, क्योंकि जो जो बातें तुम्हारे मन में आती हैं, मैं हर एक को जानता हूं। तुमने इस नगर में अपने मारे हुओं को बढ़ा दिया है और इसकी गलियों को मारे हुओं से भर दिया है। इसलिए प्रभु परमेश्वर यूं कहता है, तुम्हारे वे मारे हुए जिन्हें तुमने इसके बीच रखा है, वही मांस है और यह नगर देग है, पर मैं तुम्हें इसके बीच से निकाल बाहर करूंगा। तुम तलवार से डरे हो और मैं तुम पर तलवार ले आऊंगा, ये प्रभु परमेश्वर की वाणी है। और मैं तुम्हें उसके बीच से निकालकर परदेशियों के हाथ में सौंप दूंगा और तुम्हारे बीच अपने न्याय के काम करूंगा। तुम तलवार से मार डाले जाओगे, मैं तुम्हारा न्याय इज़राइल की सीमा पर करूंगा, और तुम जानोगे कि मैं ही प्रभु हूं। यह नगर तुम्हारी देग न होगा और न तुम उसके बीच मांस ठहरोगे, पर मैं तुम्हारा न्याय इज़राइल की सीमा पर करूंगा, और तुम जानोगे कि मैं ही प्रभु हूं। क्योंकि तुमने मेरी विधियों पर नहीं चले, न मेरे न्यायों का पालन किया, परंतु अपने चारों ओर की जातियों की रीति पर चले हो। हेजकेल 11:2-12।
अंग्रेजी में पैन उपसर्ग का अर्थ सार्वभौमिक, सभी या आर पार होता है। उदाहरण के लिए, पैनोरामा किसी क्षेत्र के व्यापक या समग्र दृश्य को दर्शाता है। पैंथियिज्म उस विश्वास को दर्शाता है कि ब्रह्मांड दैवी है और पैन अमेरिकन ऐसी किसी चीज को सूचित करता है जो अमेरिकी महाद्वीप के सभी देशों को शामिल करती हो। इस प्रकार पैन एक विश्वव्यापी युद्ध को इंगित करता है।
शैतान लोगों का ध्यान गैर जरूरी प्रश्नों में उलझा रहा ताकि वे अति महत्वपूर्ण बातों को स्पष्ट और सुस्पष्ट दृष्टि से न देख सकें। शत्रु संसार को जाल में फंसाने की योजना बना रहा है। कथित ईसाई संसार महान और निर्णायक घटनाओं का मंच बनने वाला है। सत्ताधारी लोग पोपाई सत्ता के उदाहरण का अनुसरण करते हुए विवेक को नियंत्रित करने वाले कानून बनाएंगे। बाबुल सभी राष्ट्रों को अपने व्यभिचार के क्रोध की दाख मधु पिलाएगा। हर राष्ट्र इसमें शामिल होगा। चयनित संदेश, पुस्तक 3, 342।
संज्ञा के रूप में एक्ट शब्द का अर्थ है विधायी निकाय द्वारा अधिनियमित औपचारिक लिखित निर्णय या कानून।
जब हमारा राष्ट्र अपनी शासन के सिद्धांतों का इतना परित्याग करेगा कि वो रविवार का कानून बना दे, तो इस कृत्य में प्रोटेस्टेंटवाद पोपवाद के साथ हाथ मिला लेगा। टेस्टिमोनीज खंड 5, 712।
तथाकथित ईसाई जगत महान कृतियों या एक्ट्स का एक रंगमंच है और हर राष्ट्र पैन इसमें शामिल होगा। एक्ट शब्द का अर्थ नाटक, फिल्म या किसी अन्य प्रस्तुति के एक विभाजन या खंड से भी हो सकता है, जो सामान्यतः घटनाओं या क्रियाओं के एक विशेष क्रम से चिन्हित होता है। एक्ट शब्द क्रिया के रूप में किसी विशिष्ट कार्य को करना या किसी निश्चित तरीके से व्यवहार करना होता है। यह दिखावा करने या कोई भूमिका निभाने के अर्थ में भी आता है, जैसे नाटक या फिल्म में अभिनय करना।
दुनिया एक रंगमंच है। इसके अभिनेता अर्थात उसके निवासी अंतिम महान नाटक में अपनी अपनी भूमिका निभाने की तैयारी कर रहे हैं। ईश्वर दृष्टि से ओझल हो गए हैं। मानव जाति के बड़े समूहों में कोई एकता नहीं है, सिवाय इसके कि लोग अपने स्वार्थी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आपस में गठजोड़ कर लेते हैं। ईश्वर देख रहे हैं, अपने विद्रोही प्रजाजनों के विषय में उनके उद्देश्य पूरे होकर रहेंगे। दुनिया मनुष्यों के हाथों में सौंपी नहीं गई है। यद्यपि ईश्वर कुछ समय के लिए भ्रम और अव्यवस्था के तत्वों को हावी होने दे रहे हैं, अधोलोक से आने वाली एक शक्ति इस नाटक के अंतिम महान दृश्य लाने के लिए काम कर रही है। शैतान मसीह के रूप में आ रहा है और उन लोगों में हर प्रकार की अधर्मपूर्ण छल कपट के साथ कार्य कर रहा है जो गुप्त समाजों में आपस में बंध रहे हैं। जो लोग गठबंधन के जुनून के आगे झुक रहे हैं, वे शत्रु की योजनाओं को अंजाम दे रहे हैं। कारण के बाद परिणाम आएगा। अधर्मिता लगभग अपनी सीमा तक पहुंच चुकी है। भ्रम और अव्यवस्था ने संसार को भर दिया है और शीघ्र ही मनुष्यों पर एक बड़ा आतंक आने वाला है। अंत बहुत निकट है। हम जो सत्य को जानते हैं, हमें उस बात के लिए तैयार होना चाहिए जो शीघ्र ही एक अत्यंत अप्रत्याशित आघात की तरह संसार पर टूट पड़ेगी। रिव्यू एंड हेरॉल्ड, 10 सितंबर 1903।
पेनियम और एक्टियम तृतीय विश्व युद्ध का प्रतिनिधित्व करते हैं। उस युद्ध में अलौकिक प्रकटियां होंगी, जैसा कि यूनानी बकरा देवता पान द्वारा निरूपित है। ये युद्ध रविवार के विधान को एक एक्ट के रूप में लागू कराने से संबंधित होगा और इस युद्ध की पहचान महान नाटक के अंतिम दृश्य के रूप में की गई है, क्योंकि ये केवल रविवार संबंधी विधान को लागू कराने सम का कानूनी एक्ट ही नहीं है, बल्कि मानवीय अनुनग्रह अवधि के अंतिम घंटों में सुसमाचार नाटक का चरम बिंदु भी है। उस युद्ध से पहले जहां पेनियम और एक्टियम भविष्यवाणी में एक साथ जुड़ते हैं, दानियल अध्याय 11 के पद 16 में परमेश्वर की अंतिम दिनों की सेना पहले ही खड़ी की जा चुकी होगी और उनका ध्वज जो एक निशान है तब ऊंचा उठा दिया जाएगा। निशान का प्राथमिक अर्थ सेना का ध्वज है। एक्ट और पैन, एक्टियम और पेनियम है और अद्भुत भाषाविद ने दोनों युद्धों की भूगोल, नामों और इतिहास को नियंत्रित किया, क्योंकि ये शीघ्र आने वाले रविवार के कानून से ठीक पहले का इतिहास है। पेनियम का युद्ध 200 सीला पूर्व में हुआ और पद 16 बताता है कि 63 ईसा पूर्व में रोम ने यरूशलेम पर विजय प्राप्त की। अंतिम दिनों के उस इतिहास के भीतर जिसका प्रतिनिधित्व 2000 ईसा पूर्व से 63 ईसा पूर्व के काल से होता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में पशु की प्रतिमा का निर्माण, जैसा कि 161 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व के इतिहास में दर्शाया गया है, पूरा हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में पशु की प्रतिमा खड़ी करने की अंतिम गतिविधियों के काल से पहले एक ऐसी घटना होगी जिसका प्रतिनिधित्व 177 ईसा पूर्व में मोडेइन के विद्रोह द्वारा होता है। ये विद्रोह ग्रीस के थोपे गए धर्म के विरुद्ध विद्रोह का प्रतीक है और ये विद्रोह 177 ईसा पूर्व में मंदिर के पुनः समर्पण द्वारा प्रदर्शित एक मार्ग चिन्ह तक ले जाएगा। 157 ईसा पूर्व को यहूदी धर्म में उस चमत्कार के कारण स्मरण किया जाता है जिसमें एक दिन के लिए पर्याप्त पवित्र तेल 8 दिनों तक चला। इस प्रकार 157 ईसा पूर्व, जो 161 मनफिरेट ईसा पूर्व से पूर्व है, एक ऐसे शैतानी चमत्कार की पहचान करता है जो परमेश्वर की धर्मत्यागी प्रजा के लिए संपन्न किया गया था। उस चमत्कार को इस प्रकार दर्शाया गया कि एक दिन ने 8 दिन उत्पन्न किए और उसी प्रथम दिन का तेल संपूर्ण 8 दिनों की आपूर्ति का साधन था। ये चमत्कार उस एक भाग पर लाया गया जो 7 में से था और ये वे चिन्ह उसी इतिहास के भीतर स्थापित है जहां 7 में से जो 8वां है उसकी गुत्थी धर्मत्यागी रिपब्लिकन सिंह और धर्मत्यागी प्रोटेस्टेंट सिंह दोनों पर पूर्ण की जा रही है। शीघ्र आने वाले रविवार के कानून से पहले शैतानी चमत्कारों का प्रकट होना यूनानी देवता पैन से संबंधित है। जब पैनियम का युद्ध ट्रंप और धर्मत्यागी प्रोटेस्टेंट वाद द्वारा लड़ा और जीता जाएगा तब पेंडोरा का बक्सा खुल चुका होगा और तब मानव जाति पर छोड़ी जाने वाली समस्याओं का समाधान करने का कोई उपाय नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत जल्द मनुष्यों पर एक महान आतंक आने वाला है। अंत बहुत निकट है। हम जो सत्य जानते हैं हमें उस बात के लिए तैयार होना चाहिए जो शीघ्र ही दुनिया पर एक अत्यंत चौंका देने वाले आश्चर्य के रूप में टूट पड़ने वाली है। 144,000 वे हैं जिन पर परमेश्वर के वचन की उस पवित्रीकरण करने वाली सामर्थ्य द्वारा मुहर लगाई गई है जो यीशु मसीह के प्रकाशन के खोले जाने के द्वारा प्रदान की गई। उस प्रकाशन में सत्य की अनेक विशिष्ट धाराएं सम्मिलित हैं और वो इस विषय में पवित्र किया हुआ निर्देश प्रदान करता है कि यीशु कौन है। परमेश्वर के वचन के रूप में वही अद्भुत भाषाविद हैं जिन्होंने समस्त मानवीय भाषा को नियंत्रित किया है, क्योंकि अपनी सामर्थ्य के द्वारा उन्होंने बाबेल के गुम्बट पर भ्रम बरसाकर विभिन्न भाषाओं को अस्तित्व में लाया। वही अद्भुत गणना करता है जिन्होंने अपने वचन में प्रस्तुत संख्याओं के भीतर और अपनी समस्त सृष्टि के भीतर रहस्यों को छिपाया है। वही इतिहास के नियंता है, क्योंकि इतिहास हिज स्टोरी है। उन्होंने पृथ्वी की सृष्टि की और जल प्रलय के पश्चात पृथ्वी ग्रह की भौगोलिक बनावट को नियंत्रित किया और इसलिए उन विभिन्न भविष्यद्वाणीपूर्ण भूगोलों को भी जो उनके वचन में पाए जाने वाले सत्यों का गठन करते हैं। 144,000 अन्य बातों के साथ साथ उन लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो ये विश्वास प्रकट करते हैं कि उसी ने सब वस्तुओं की सृष्टि की।
आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। वही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा बनाया गया और जो कुछ बनाया गया उसमें से उसके बिना कुछ भी नहीं बनाया गया। यूहन्ना 1:1-3।
पंडोरा के बक्से की कथा प्राचीन यूनानी पौराणिक परंपरा का एक मिथक है। इसका वर्णन मुख्यतः यूनानी कवि हेसियड की वर्क्स एंड डेज तथा विभिन्न अन्य शास्त्रीय स्रोतों में मिलता है। ये स्पष्टतः अदन की वाटिका में हव्वा के अनुभव का एक भावानुवाद है। पेंडोरा नाम प्राचीन यूनानी पौराणिक परंपरा का यह है। ये यूनानी शब्दों पैन से विपन्न है जिसका अर्थ सब और डोरा से जिसका अर्थ उपहार है। पेंडोरा का अर्थ है सब प्रकार के उपहारों से संपन्न। हव्वा कलीसिया का प्रतीक है और सब वरदान परमेश्वर की कलीसिया के भीतर पाए जाते हैं। यूनानी पौराणिक कथाओं में पेंडोरा देवताओं द्वारा सृजित पहली नश्वर स्त्री थी। कथा के अनुसार मानवता को दंड देने की योजना के हिस्से के रूप में देवताओं के राजा ज्यूस के आदेश पर हेफेस्टस ने उसे गढ़ा। प्रत्येक देवता ने पेंडोरा को उपहार दिए जिनमें सौंदर्य, लावण्य, बुद्धि और आकर्षण शामिल थे। ज्यूस ने उसे एक कलश दिया। बाद की कथाओं में इसे डिब्बा कहा जाने लगा और उससे कहा कि किसी भी परिस्थिति में उसे न खोले। हव्वा से कहा गया था कि वो हर पेड़ का फल खा सकती है सिवाय उद्यान के बीच के पेड़ के। पेंडोरा जिज्ञासा से अभिभूत होकर अंततः प्रलोभन के आगे झुक गई और घड़ा खोल दिया। ऐसा करते ही अब तक भीतर बंद रखी गई सारी बुराइयां, पीड़ाएं और रोग बाहर निकलकर दुनिया में फैल गए, जिससे मानवता में कष्ट और दुख फैल गया। हालांकि घड़े में एक चीज रह गई, आशा। मिथक के कुछ संस्करणों में पेंडोरा ने तुरंत घड़ा बंद कर दिया, जिससे आशा बाहर निकलने से रुक गई, जबकि अन्य में आशा भी बाहर आ गई और विपत्ति के सामने मानवता को आशावाद और लचीलेपन की एक झलक प्रदान की। पानियम की लड़ाई निकट आने वाली रविवार व्यवस्था में एक्टियम की लड़ाई के साथ जुड़ती है, और ये निकट आने वाली रविवार व्यवस्था अदन की वाटिका में हुई परीक्षा द्वारा पूर्व छायित थी। वाटिका में ये परीक्षा केवल आदम और हव्वा के लिए थी, परंतु अंतिम दिनों में ये आवश्यक था कि परीक्षा समस्त संसार के चारों ओर रहने वाली पूरी मानव जाति के सामने आए। वाटिका में परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने या अविश्वास करने की पहली परीक्षा रविवार व्यवस्था की अंतिम परीक्षा का प्रतीक है। हव्वा उस पहली परीक्षा में असफल हुई और उसने मानव जाति पर विपत्ति के बाढ़ द्वार खोल दिए, जैसा कि पेंडोरा की मिथक में दर्शाया गया है। जब पेनियम का युद्ध एक्टियम के युद्ध से जुड़ता है, तब ईदन की वाटिका में दर्शाई गई परीक्षा समस्त मानव जाति के सामने प्रकट हो जाएगी। उस समय संसार को जो आशा प्रदान की जाती है, वही वो ध्वज है जिसे इस प्रकार उठाया जाता है कि उसे समूचा संसार पानोरामा देख सके।
हे समस्त संसार के निवासियों और पृथ्वी पर रहने वालों, जब वो पर्वतों पर ध्वजा उठाए तो तुम देखो, और जब वो नरसिंगा फूंके तो तुम सुनो। यशाया 18:3।
हम इस अध्ययन को अगले लेख में जारी रखेंगे।
दुनिया एक रंगमंच है, इसके निवासी अभिनेता अंतिम महान नाटक में अपना हिस्सा निभाने की तैयारी कर रहे हैं। मानव जाति के विशाल जनसमूहों में कोई एकता नहीं है, सिवाय इसके कि लोग अपने स्वार्थी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आपस में गठजोड़ कर लेते हैं। परमेश्वर देख रहा है, अपने विद्रोही प्रजाजनों के संबंध में उसके उद्देश्य पूरे होकर रहेंगे। संसार मनुष्यों के हाथों में नहीं सौंपा गया है, यद्यपि परमेश्वर कुछ समय के लिए अराजकता और अव्यवस्था के तत्वों को प्रभुत्व करने की अनुमति दे रहा है। नीचे से आने वाली एक शक्ति नाटक के अंतिम महान दृश्यों को लाने के लिए काम कर रही है। शैतान मसीह के रूप में आ रहा है और अधर्म की समस्त छलकपट के साथ उन लोगों में कार्य कर रहा है जो गुप्त समाजों में एकजुट हो रहे हैं। जो लोग गठबंधन की लालसा के आगे झुक रहे हैं, वे शत्रु की योजनाओं को ही पूरा कर रहे हैं। कारण के बाद परिणाम अवश्य आएगा। ये संदेश आज जितनी प्रबलता से लागू है, उतनी प्रबलता से कभी नहीं था। दिन ब दिन संसार परमेश्वर के अधिकारों को अधिकाधिक नकार रहा है। लोग पाप करने में निर्भीक हो गए हैं। जगत के निवासियों की दुष्टता ने उनके अधर्म का पैमाना लगभग भर दिया है। ये पृथ्वी लगभग उस अवस्था तक पहुंच गई है जहां परमेश्वर विनाशक को इसके ऊपर अपनी इच्छा के अनुसार काम करने की अनुमति देगा। परमेश्वर की व्यवस्था के स्थान पर मनुष्यों की व्यवस्थाओं का प्रतिस्थापन और केवल मानवीय अधिकार से बाइबल के विश्राम दिन के स्थान पर रविवार को ऊंचा उठाना इस नाटक का अंतिम अंक है। जब ये प्रतिस्थापन सार्वभौमिक हो जाएगा, तब परमेश्वर स्वयं को प्रकट करेगा। वो अपनी महिमा में उठकर पृथ्वी को भयानक रूप से हिला देगा। वो अपने स्थान से निकलकर जगत के निवासियों को उनके अधर्म के कारण दंड देने आएगा, और पृथ्वी अपना रक्त प्रकट करेगी और अपने मारे गए लोगों को अब और नहीं ढंकेगी।
हम युगों के संकट की दहलीज पर खड़े हैं। तेजी से एक के बाद एक परमेश्वर के न्याय आएंगे, आग, बाढ़ और भूकंप, साथ ही युद्ध और रक्तपात। इस समय महान और निर्णायक घटनाओं से हमें चकित नहीं होना चाहिए, क्योंकि दया का स्वर्गदूत पश्चाताप न करने वालों को शरण देने के लिए अब अधिक देर तक ठहर नहीं सकता। संकट दबे पांव धीरे धीरे हम पर आ रहा है। सूर्य आकाश में अपनी नियत परिक्रमा करता हुआ चमक रहा है, और आकाश अब भी ईश्वर की महिमा का वर्णन करता है। लोग अब भी खाते पीते, बोते और बनाते, विवाह करते और विवाह कराते जा रहे हैं। व्यापारी अब भी खरीद बिक्री कर रहे हैं। लोग एक दूसरे से धक्का मुक्की करते हुए सबसे ऊंचे स्थान के लिए होड़ में लगे हैं। भोग विलासी लोग अब भी थिएटरों, घुड़दौड़ों और जुआखानों की ओर उमड़ रहे हैं। चारों ओर उत्तेजना चरम पर है,
फिर भी अनुग्रह का काल तेजी से समाप्त हो रहा है और हर एक के विषय में सदा के लिए निर्णय होने को है। शैतान देख रहा है कि उसका समय कम रह गया है। उसने अपने सारे साधन काम पर लगा दिए हैं ताकि लोग धोखा खाएं, भ्रमित रहें, व्यस्त और मोहित बने रहें, जब तक कि अनुग्रह का काल समाप्त न हो जाए और दया का द्वार सदा के लिए बंद न हो जाए। अधर्म लगभग अपनी सीमा तक पहुंच चुका है। दुनिया भर में भ्रम व्याप्त है और शीघ्र ही मानव जाति पर एक भयंकर आतंक आने वाला है। अंत बहुत निकट है। हम जो सत्य जानते हैं, हमें उस बात के लिए तैयार होना चाहिए जो शीघ्र ही अत्यंत चौंका देने वाले आश्चर्य के रूप में दुनिया पर टूट पड़ेगी। अधर्म के प्रबल होने के इस समय में हम जान सकते हैं कि अंतिम महान संकट निकट आ पहुंचा है। जब परमेश्वर की व्यवस्था की अवज्ञा लगभग सर्वत्र हो, जब उसके लोग अपने ही सह मनुष्यों द्वारा उत्पीड़ित और क्लेशित किए जा रहे हों, तब प्रभु हस्तक्षेप करेंगे। हम महान और गंभीर घटनाओं के दहलीज पर खड़े हैं। भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं। स्वर्ग की पुस्तकों में विचित्र घटापूर्ण इतिहास दर्ज किया जा रहा है। हमारी दुनिया की हर चीज उथल पुथल में है। युद्ध हो रहे हैं और युद्धों की अफवाहें हैं। राष्ट्र क्रोधित हैं और मृतकों का समय आ गया है कि उनका न्याय किया जाए। घटनाएं बदल रही हैं ताकि परमेश्वर का वो दिन आ जाए जो अत्यंत शीघ्र निकट है। कहने को बस एक क्षण भर का समय ही शेष है। परंतु जबकि पहले से ही राष्ट्र राष्ट्र के विरुद्ध और राज्य राज्य के विरुद्ध उठ खड़े हो रहे हैं, फिर भी अब तक कोई सर्वव्यापी संघर्ष नहीं हुआ है। अभी तक चारों पवनें रोकी गई हैं जब तक कि परमेश्वर के दासों के माथों पर मुहर न लगा दी जाए। तब पृथ्वी की शक्तियां अपनी सेनाएं अंतिम महान युद्ध के लिए एकत्र करेंगी। क्रिश्चियन सर्विस 50:1।